हम लफ्जों पर विचार करने वाले अनुसार गुरु अकाल पुरुष परमात्मा ने आत्म प्रेरणा ने बिना आत्मा ने परमात्मा का खून करवा आत्मा का कल्याण किस तरीके न होगा आत्मा तपस्वी महसूस करती है ज्ञान आदि कम शांति भी तलाश में होता है सुख शांति उसको उस वाणी का संचार वाणी समझण वास्ते विचार करने वास्ते एक ऐसी आत्मा की जरूरत है जो अपने हुक्म इस जगत के व्यक्त करें from here. 5 minutes. अलग अलग श्लोकों में उस परमात्मा जी के लिए नाम व्यक्त किया गया है। पदार्थ एक ही है, लफज अनगिनत है, किसे हुक्म किया गया है, किसे वाणी किया गया है, किसे नाम किया गया है, किसे शब्द किया गया है, किसे अपने ज्ञान किया जाता है, किसे अकत कथा किया है, किसे निर्माण चिंतन किया गया है। असली ना लफ्जों के भी फस चुके हैं, उसके हुक्म नु असी लफज समझ करके उन्होंने बाणी भाव जो है इस जगत के प्रचारित कर रहे हैं। जितना भी प्रचार जगत में हो रहा है बेशक उस परमात्मा वास्ते है, पर इन के भाव जो है इस शैतान की ताकत में व्यक्त कर रहे हैं। शैतान ईसाई जगत के मुस्लिम जगत के सूरत की ताकत में शैतान किया जाता है, सिख जगत के हिंदू जगत उसको काज किया जाता है। गुस्सा शैतान लफज का लफ्ज इस्तेमाल क्यों करते हैं उसका कारण है, जो असं काल कहते हैं उसके भी साढ़े को यहोजे भाव नहीं स्पष्ट होते जैसे शैतान लफज को उकार दिया ही स्पष्ट हो जाता है कि साड़ा नुकसान हो, कोई ऐसी ताकत है, कोई ऐसी गल है जिदे असी लाभ को दूर होते नुकसान भी चलेगा। इस करके गुरु साहब उस काल शैतान कहकर के उस परमात्मा की खेत अपने शैतान के चल रहे, शैतान भी उसका बनाया हुआ एक आत्मा है, एक आत्मा जिसने अनंत युगों तक उस अकाल पुरुष परमात्मा की गति उस जिंदगी का क्या नतीजा है, परमात्मा ने प्रसन्न होकर के उसने अपना इस खेड़ के अपने सामने बिठाया, खंड पाठ जीव समूह सब काले वस्त आप सब ये सारी रचना रच करके उसके हवाले की गई है। फिर एक मुल्क उससे अपनी रचना बेशक तीन मुल्क जड़े हैं इस मुल्क के नीचे हैं, अतुल पाताल इस वक्त असी मृत लोग जड़ी चीज असी देख नहीं सकती उसके बारे कुछ सीमा तो अधिक बयान करने का कोई ना, इसके उपर के जोड़े मुल्क हैं उन्होंने बारे असी विचार करिए सामने कुछ नाम देख सकता है। इसके उपर मृत लोग के उपर सूक्ष्म मुल्क है, उसके ऊपर कारण मुल्क है, ये तीन मुल्क जो है शैतान इन्हों का परमात्मा शैतान है। इसके तीन गुण एका मारी युक्त गुण तीन तीन गुण एक संसारी एक पंडारी एक लाई ये पूरे चलावे जिन हो गए सम्मान वो देखा वो नजर ना आए होता है। नाथ साहब ने जप बाणी में एक होली मन माया ये अर्धांगनी है, यह हथियार है, यह शैतान का धर्म है। इस व्यक्ति ने राजप होता इस तीन गुणा के नाम प्रकृति व्यक्त करने वास्ते संसारी भंडारी प्रतिभा। संसारी कौन है? जड़ा इना पिंजरिया रचता है, जड़ा इना शरीर रचता है। कितने शरीर जो राखी जा जरा इना शरीर की पालना करता है। संसारी ब्रह्मा जी किया जाता है, भंडारी में भगवान नारायण किया जाता है। और जो इना पिंजरिया खत्म कर देता है, सारी सृष्टि को अपने भी लीन कर लेता है, भगवान। तो तीन गुण के जरिए शैतान जो है इस खेड में चलाता है। हम इस कीमती चीज कही है खेड के रोचकता लियान वास्ते उस परमात्मा ने अपना अंश जो है सामने दान दे गोदा। वो अंश की है, वो कीमती चीज की है, उसने रूप किया, कुर्त किया, ख्याल किया, आत्मा किया। कि आत्मा दान दे जड़ी आत्मा तुम चौपड़ का खेड़ खेड़ दे बच्चे खेड़ते हैं उस जड़ी गोट जड़ी है चल करके विचकार अपने खाने के अपने घर पहुंच जाती है। वो खेड़ तो अलग कर इस तरीके के नाल जितनिया भी खेडा जितनिया भी चीजा जितने भी रूप असं इस जगत में देखते हैं ये सूक्ष्म और कारण लोक के और अंदर से चल रही उस रूहानी क्रिया में व्यक्त करने वाले विकृत हो रहे। अगर ऐसी आत्मा मिल जाए जी इस खेड के हिस्सा लेंदी है और सारी चीजों परमात्मा की ताकत के नाल देखती है, वो तुहानू इस सारे जाल में दस सकती है। ये जाल किस तरीके का रच रखा है, इस खेड के किस ढंग के नाल किन्हां नियमों का पालन करके तू अपने घर पहुंच जड़ी गोट घर पहुंच गई वो खेड़ तो अलग। जड़ी आत्मा इस शब्द के नाल इस हुक्म के नाल जुड़ गई उसे तक पहुंच गई इसको प्राप्त कर लिया इस लीन होकर के जिस जगह तो यह हुक्म आता है उसे पहुंच गया। उस तो बाद उसका इस जगत के इन्हों मुल्कों के कोई काम नहीं, वो आनंद मनाती है, बोझ करती है उस अकाल पुरख परमात्मा की उस ऐसी रचना के जड़ी रूप तो रहित है, लाभयान है, अलग है, अगम है, अगोचर है। उसको किसी भी लफ्ज के नाल व्यक्त नहीं किया जा सकता, कारण ये लफ्ज जो हैं ये शैतान का अंश है। तीन मुल्कों तक इसका काम है, बल्कि प्रत्यक्ष रूप से जो लफ्ज है हैं वो केवल इस मृत लोक तक ही काम करते हैं। जो तुम इस मृत लोक तो उत्ते सूक्ष्म लोक भी जाओगे उस वक्त ये लफ्ज खत्म हो जाए। जो सिमरन तुम दिता जाता है परमात्मा याद करने वास्ते जो लफ्ज दिते जाते हैं ये सब खत्म हो जाता है। उस तो अगे फिर कि ताकत काम करती है आत्मा दृष्टि का जिसको ध्यान किया जाता है, ख्याल किया जाता है। केवल ख्याल के नाल सारे विचारों का आदान प्रदान होता है, केवल ख्याल के नाल समस्त दूरियां जड़िया तय कर दी जाती हैं। इस वक्त ये ताकत तुरों चल करके आप जी के सामने प्रत्यक्ष हुई है तो विचार करके देखो किस ढंग के नाल प्रकट हो गई, किस ताकत के नाल एक आत्मा उस परमात्मा के नाम शब्द में उसकी ताकत में जड़ी लफ्ज़ां दे बयान नहीं की जा सकती, उस दे ऊपर आधारित होकर के आप जी के सामने प्रकट। कोई रॉकेट नहीं बनाए गए, कोई वर्दियां नहीं बनाई गई, अनंत मंडल हैं, अनंत मुल्क हैं, और हर मंडल का हर मुल्क का अपना नियम है, अपनी वर्दी है। इस वक्त जड़ी वर्दी असं पा करके बैठे हैं शरीर पृथ्वी का पुष्प आ रहा है, ਸੂਖਮ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਤੱਤੂ ਦਾ ਹਾਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਸ਼ ਚਾਰ ਤੱਤੂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਖਮ ਤੱਤੂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸੱਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਭਾਵ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਇਸ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਕਬਰ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰਵਾਰ ਦਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਬੰਦਰ ਹੈ ਇਹ ਕਬਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁਕਮ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ। ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਇਸ ਕਬਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਵਾਜ਼, ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਗ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਧੁਨ ਹੈ। ਨਿਚਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ, ਸ਼ੰਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਆ ਭਾਵ, ਜਿਹੜੇ ਯੋਗੀ ਜਨ ਇਸ ਕਬਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਨੰਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਅਸਲ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣ। ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ, ਇਸ ਆਕਾਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਜੋ ਹੈ ਸੂਖਮ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਔਮ ਲਫਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਖਮ ਮੁਲਕ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਅਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਔਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਚਾਲ, ਆਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਸਕੇ। ਕਾਰਨ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਗੋਟ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਸਨੇ ਗੋਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਇਹ ਗੋਟ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਐਸਾ ਜਾਲ ਰੱਚ, ਐਸੀ ਰਚਨਾ ਰੱਚ ਕਿ ਇਹ ਆਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਇਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਏਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗੋਟ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣ। ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਡਾਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਰਵਾਹਾ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ, ਚਾਹੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢੇ। ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੱਟ ਕਤਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਭ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਅੰਸ਼ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਹਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹਨ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੰਢ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧੀ ਹੋਈ, ਆਤਮਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੀ, ਉਸ ਹੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹੱਕ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਤਨਾਮ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਲਕ ਲਾਚਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਬਾਵਨ ਅੱਖਰ ਲੋਕ ਕਰੈ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਖਿਰ ਜਾਏਂਗੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਇਨਮੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਬਾਵਨ ਅੱਖਰ। ਬਾਵਨ ਅੱਖਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਭਰਮਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਛੇ ਸਮਸਤ ਜੂਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਮਾ ਹੈ, ਫਲ ਹੈ। ਔਰ ਕਰਮ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਇਹ ਖੇਡ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗੋਟ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ, ਕਰਮ। ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਨਹੀਂ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕੇਵਲ ਬੀਜ ਬੀਜ ਦਾ ਖੇਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਖਾਲੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਬੀਜਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਦਾ ਲਈ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੇਵਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਤਮਾ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤਿਅਕਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਘੇਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਘਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਉਸਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋਵੇ, ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਜੋ ਹਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਾਗੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ, ਸੁੱਤੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਉਸਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕਣ ਉਸ ਹੁਕਮ। ਉਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਰਮ ਰੇਤੇ ਸਿਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਧਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੌਜ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪਛਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਰਜੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਅਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਗਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕਰਮ ਦੀ ਮੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ? ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਸਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖੀ ਔਰ ਪਿਆਸੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਕ ਟੱਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਏਸੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੱਖੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ,
ਜਿਤਨਾ ਰੂਪ ਰਚਿਆ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਰਚਿਆ। ਇਹਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਨਿੱਜੀ ਸੁੱਖ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮ ਹੈ ਉਸਦੇ ਤਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ ਕਰੀ। ਉਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਟੋ ਦੀ ਰੱਦ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੇ ਉੱਥੇ ਦੁਰਗੰਧ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਭਾਈ ਜਿਤਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋਏ ਲੈ ਜਾਓ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਸਨੂੰ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਹੋਰ ਦਬਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਬਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਹੋਰ ਹੈ ਦਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਕਲ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਬਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਜਗਤ ਦੇ ਵੀ ਈਸਾਈ ਜਗਤ ਦੇ ਕਬਰਾਂ ਬਣਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੇਵਲ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਜੰਗਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਕਟ ਬਣਾ ਲਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਲਏ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਰਹੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਭੌਤਿਕ ਸੰਪਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੰਗਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਚਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਦੋਜ਼ਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਏਗਾ ਜੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਈਸਾਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰ ਉਹ ਕਬਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਠੰਡੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਤੇਲ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ। ਪਿਰਾਮਿਡ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣੇ ਗੋਲ ਪੈਣਗੇ, ਹੁਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਣ। ਕੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਾਰਨਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਕੋ ਜਲਾ ਦਿਆ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਹੋਏਗੀ, ਪਰਲੇ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਠ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਕਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੁੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਦੀ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਕੇਵਲ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਤਨ, ਆਤਮਾ ਦਾ। ਕਬਰ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਕੀੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿੱਛੂ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਨਾ 5 ਕਿਲੋ ਬਿੱਛੂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਲਓ, 5 ਕਿਲੋ ਬਿੱਛੂ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਬਰ ਨੂੰ ਪੱਟ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤ ਲੋਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਲੱਭਣੀ ਪਏਗੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਬਰ ਨੂੰ 2.5 ਗਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਿਸਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਜਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਤੀ ਜੋਨੀ ਦੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾਣਗੇ। अंतकाल मैल सुंदर ऐसी चिंता नहीं जाता रहा प्रेत जून वाले वाले प्रेत की जून निश्चित है। और की कहना तुम्हें इन्हों की नकल करके अज अपने मुल्क के जो आत्मा का विकास किया गया ऋषि मुनिया ने दसिया तुम कि आत्मा का कल्याण किस तरीके हो सकता है। जितना भी योगी मत है इस जगत केवल हिंदुस्तान किसी जगह तो धरती के छह हिस्सों के उन्होंने स्पष्ट किया कि पुराण के व्यक्त किया गया कि आत्मा इस धुन में पकड़ करके इस शब्द को पकड़ करके इस कबर से निकलती है और अनंत मंडला में पार करके अपने परमात्मा तक पहुंचती है। वो सारा ज्ञान है किसे इन्हों की नकल करके तुम उन्हों रूहों जिड़िया जिंदगी पर ब्रह्म वर्ती रह करके बंदगी कर दिया ने परमात्मा का पर अपने मुकाम को प्राप्त ना कर सकिया तुम अपने मोह जाल के बन लिया उन्होंने कबर बना उन्होंने कबर चुनते हो चकते हो परिक्रमा करते हो उन्होंने मंगा मंगते हो बेचारे कितने जाएंगे। छह किस्म दैवी जूना ने जिड़िया इस जगत के इस मनुख जगत भड़काने वास्ते शैतान ने कष्ट किन्नर गंदर प्रेत राक्षस दानव देव छह जूना के बहुत ताकत है क्योंकि यह सूक्ष्म शरीर यही ताकत जड़िया ने तुम इन कबरों के मिलन जड़िया मंगा पूरिया होंगे और जितनी भी जगत के जड़ पूजा देखी जा रही है इस शैतान की करामात इस जगह से वो भंडारी मौजूद है जिसे लाइन लग दिया अपनी अस्थी को कुर्बान कर रहे हो मंगा मंग रहे हो उस ताकत सूक्ष्म शरीर के इतने मौजूद हैं तुम्हारिया मंगा पूरिया कर दिया शैतान का हुक्म जो मंगे दे दे अगर अधिकारी नहीं नेता भी दे दे क्योंकि वह जानता है ये ताकत नहीं जानती और देखे और नजर वो इन्होंने ताकत देख रहे तिना काम करते हुए पर आप गुप्त है लुप्त है उसकी माया नहीं पछाण सकते इसकी माया मनुख नहीं पछाण सकया इन्होंने तिना ताकत की माया जो इस जगत के अंश ला करके आदियां ने उन्होंने पछाण नहीं की जाती तो मनुख बेचारा उस शब्द को किवें पछाण इस जान को किवें पछाण लवे किवें निकल जाए यह विचार कर केवल मनुख जन्म के विचार किया जा सकता किसी होर जन्म के नहीं किया जा सकता कि समस्त जूना जड़िया ने बेशक सूक्ष्म और कारण शरीर जड़े ने केवल मनुख जन्म के अपनाई गई किरिया का प्रतिफल है और इन प्रतिफलों देने का अधिकार केवल शैतान इस तो बाहर नहीं जा सकता वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता संसार वो अपने के जीन करता जा रहा खाता जा रहा उसे सुख को सुख है मानत है मनमोह जगत चवेना काल का कुछ मुख में कुछ तो खांदा जा सारे दिन भगवान कृष्ण जी उसकी ताकत में लाकर के अंश में लाकर के आए उन्हें स्पष्ट किया मैं ही काल हूं मैं ही शैतान हूं पर आज सारे जगत के सारे मनुख जड़े हैं कुर्बान उस ताकत के ऊपर उस रूप के ऊपर उस प्रक्रिया के उपर जी जगत के प्रकट की गई कि कुंडली के उपर पूरे पर्वत ने कभी यह विचार नहीं की कि आनंद ब्रह्मांड हम करोड़ों गुणा वे इस पृथ्वी इन्हों किसने चुकर जी उंगली है जी इन्हों खड़ा करके घुमा रही और दौड़ा रही ये पृथ्वी घुम रही सूरज की चक्कर लगा रही सूरज भी दौड़ रहा 2002 योजक प्लस चक्कर के सूरज दौड़ जाए सामने खड़ा नजर आ रहा पृथ्वी इन छाती चीर के कितनी बड़िया बड़िया बिल्डिंगा बनाई जा रही कितनी शांति के नाल काम हो रहे हैं कभी चार की घूम रहे पर पता ही नहीं चल कई घंटे बाद पता चलना भी चक्कर लग उसके बाद दूसरे में भी चक्कर लगा रही रिश्वा बदल रही है सब काम हो रहे हैं किस वास्ते उस हुक्म पछाण इस शैतान के जाल केवल और केवल शैतान को अगे इस जाल में समझने वास्ते विचार करने वास्ते वो आत्मा इस जगत के प्रत्यक्ष की जाती है वो आत्मा घरों भी आ सकती है सिद्धि उन्होंने जिंदगी के इतिहास में जब तुम विचार करो तो स्पष्ट हो जाएगा कि आत्मा घरों सीधी भेजी गई है परमात्मा के इस जाल में व्यस्त करने वास्ते उन्होंने रूहों कढ़ने वास्ते याद कराने वास्ते उस हुक्म को पछाण के अपने घर आ जाओ या इस जगत के उसको तैयार किया जाए उन्होंने निजी जिंदगी के इतिहास में पढ़ के पता चल विचार करके पता चल जी रूह बाल अवस्था के ही उसके कोतकों प्रत्यक्ष कर लग जाए वो स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा जो है अपना काम कर चुकी है अपना काम कि शब्द को पछाण दे शब्द को प्राप्त कर देना उस तक पहुंच जाना जिसे वह अपना कर उजड़ जिथे तैयार की जाती है उसकी जिंदगी के असंख्य रुकावटा पेश की जा गुरु तेग बहादुर जी चौबी साल जमीन के अंदर गुफा बना करके करते रहे कि प्रोजेक्ट से उन्होंने कोई विचार करके देखो गुरु तेग बहादुर सिमरी कर नौ नहीं भी आवे केवल बैंड बाजे के नाल इस बचन को गा करके पुकार करके क्या तुम घर चले जाओगे उस आत्मा इस शब्द को पछाड़न वास्ते अनंत जन्म लगे हैं अनंत जन्म उसने तप किए हैं जिसनों तुम गुरु तेग बहादुर अनंत जन्म का तप है और जिस जन्म के शब्द को पछाड़ना सी उस जन्म के भी जिंदे जी कुर्बान होए जिंदे जी अपना सर्वस्व उस परमात्मा अर्पण किया सब संसार की शहर ठोकर मारी अपनी प्यारी तो प्यारी वस्तु ठोकर मार करके जमीन के अंदर गुफा बना करके चौबीस साल उस अकाल पुरख परमात्मा की बंदगी किया तब उन्होंने हुक्म की पहचान हुई हुक्म की प्राप्ति हुई उस हुक्म को प्राप्त करके वो आत्मा अपने घर गई उसका नतीजा शैतान ने की कढ़िया जिंदे की सिर गए और तुम केवल उसको पुकार करके उस आत्मा के केवल लफ्जी नाम को पुकार करके उस हुक्म को पहचान लोगे उस नाम तक पहुंच जाओगे ये किसका विचार है शैतान ठीक उसे तरीके के बारे श्री गुरु हरकृष्ण से दिखने का मतलब प्रत्यक्ष हो जाना हर किशन लफज का पछाण करो हर का मतलब है हर लैन वाला तुहाडे समस्त पापा जो हर लैंदा वो हरी है किशन का भाव की हर जमा किशन किशन किसनों किया है आकर्षण जिस दिन आकर्षण ध्याई का मतलब है इस आकर्षण को प्राप्त कर लो वो आकर्षण जिसन हरी किया है जो स्पष्ट पापा हार लगे अर्थ कितने कटन इस अकाल पुरख उसका जो गुण है नाम शब्द यह सब पापा का नाश करता है सब पापा हरता है और इस अंदर एक आकर्षण भी है नाम भी पहचान है वो लफज नहीं है वो आकर्षण आकर्षण कैसा है जिस तरह एक मैगनेट के लोहे को खिंच लैन का आकर्षण है जिसमें किसी तरह लोहे के कोल मैगनेट को लियाओ मैगनेट गया लोहे को खिंच लिया उसी तरीके के नाल जड़ चेतन लोग की संभाल करन वाला बनाण वाला खत्म करके फिर पैदा करन वाला एक कृष्ण है कृष्ण यानी आकर्षण आकर्षण यानी नाम नाम यानी अकाल पुरख परमात्मा हुण शैतान ने की किया हरि को प्रगट कर भगवान विष्णु जी को हरि किया गया चलते फिरते हरि की जगत में आ गए चार भुजा लेकर और दुनिया भर के वरदान देते अपने चेहरे से इतना तेज प्रकट कर दिता नाम का कि सारिया रूह जड़िया ने भरम में आ गई कि परमात्मा जी प्रत्यक्ष हो गए फिर भी कुछ भरम रह गया ऋषिया ने कहा कि वह कृष्ण है आकर्षण है उस शब्द के आत्मा खिंचता है लै जाता है अपने घर के कितों वो आ रहा उन्होंने एक चलता फिरता पंछी दिखाता है ऐसा प्यारा किशन दे दिता जड़ी रूह उसनों एक बार देख लवे तुहाडा दावा है वह किसी होर रूप में देखना पसंद नहीं है ऐसा आकर्षण है उसके रंग बेशक काला है जो शैतानदान च फामला है उसी अंश में लैके भगवान श्री रामचंद्र जी आए उसी ताकत में व्यक्त किया कोतक रचाए जन्म तो रचाए जिन्हें डेफिनेशन ऋषि मुनिया ने उस शब्द दिया जितने नाम रखे उसका नाम राम रखे और राम है। शैतान ने भी दिया चलता पता दशरथ राम के सती से 10,000 साल तक अपना छतर चलाया। सारा जगत आज भी उस राम की पूजा कर रहे हैं। तुलसी जी ने क्या बयान किया, तात राम नाही नर गोपाला भुवनेश्वर कालू का काला। मेरा राम नर कोई राजा नहीं है पृथ्वी का, गोपाला पृथ्वी का राजा नहीं है, फिर कौन है? भुवनेश्वर अनंत ब्रह्मंडों का स्वामी है मेरा राम, कालू का काल, काल का भी काला, वो शैतान नु भी बनाने वाला है क्योंकि सब आत्मा उस परमात्मा जो करिए। काल नु शैतान नु जो ताकत देती परमात्मा ने अपना रूप जो दिता, रूप का मतलब है नाम देता, खबर देता, अपनी ताकत देती है। अगर दोनों की टक्कर बराबर की नहीं होएगी, दोनों की ताकत बराबर की नहीं होएगी तो काम की वह चलेगा। पर जित उस परमात्मा की होनी कारण की है, क्योंकि परमात्मा जो है वो किसी को नहीं है। विचार करना है हूँ असी इस जगत के बीच जितने भी जगत गुरु साहब ने पिछले शासन व्यक्त किया कि उस परमात्मा असी तलाश किसे कर रहे हैं। काहे रे बन खोजन जाई, बन स्पष्ट किया इको लफज गुरु साहब ने पिछले शासन स्पष्ट किया कि बन, बन का मतलब है जितने भी स्थान हैं गुरुद्वारे मंदिर डेरे मस्जिदा गिरजाकार समुंदर तालाब सरोवर जो कुछ आकाश के बीच बना रखे ने अपनी इस दिन तलाश करने वास्ते परमात्मा को बन काहे बन काहे क्यों रे का भाव है आत्मा। रे की जगह आत्मा लफज में लगाओ, काहे की जगह क्यों लफज में लगाओ। हे आत्मा क्यों तू इन स्थाना से जो गुरु साहब ने व्यक्त किया है स्पष्ट किया है उसकी तलाश कर रही है, खोज कर रही है, खोजन जारी खोज कर। आज का शब्द गुरु साहब वक्त रहे हैं तलाश, तलाश उस तलाश कर रही है इन स्थाना पे क्यों। सरब निवासी सदा लेपा सोहे जड़ कीर्तन विच रहन वाला समाया होया प्रकृति नु बनाने वाला आत्मा नु बनाने वाला सोहे संग तेरे संग 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 तू कौन है? तू उसका अंश है, तू परमात्मा का अंश परमात्मा ही है। और ये परमात्मा नाम शब्द तेरे अंग संग है, हर वक्त जड़ चेतन के बीच मौजूद है। जब ये शब्द सिमट जाता है परले आ फिर उसकी तलाश तू है इन जगह से क्यों कर रहा है। पुष्प मध जू वास वकत है मुकर नहीं देते पुष्प दे फुल दे जिस तरह सुगंधी है तू अलग नहीं कर सकता। मिसाल है किस्से के बीच परछाई इस अलग नहीं किया, ठीक उस तरीके के नाल ओ परमात्मा अकाल पुरुख नाम के रूप के बीच नाम उसका गुण है गोबिंद गुण नाम धुन बाणी सिमरत साहसाशन सब उस अकाल पुरुख परमात्मा के इस नाम नु, इस गुण में व्यक्त किया गया। और तेरे संग तू भी तलाश किसे कर रहा है इन स्थानों पर कर रहा है। तेरी इस स्थान की जा रही तलाश कभी पूरी नहीं, फिर किस तरह किया जाए कि तलाश की हुई आज के इस शब्द के मूल मंत्र के गुरु नानक साहब ने उस अकाल पुरख परमात्मा की पहचान वास्ते एक कसौटी रखी है। कबीर कसौटी राम की झूठा टिके ना कोई, राम कसौटी सो सहे जो मर जीवा, जो जिंदे की मरदा है कुर्बान होता है उस अकाल पुरख परमात्मा की उस कसौटी उस शब्द उस नाम प्राप्त करने के काबिल बन। वो कसौटी कितनी है मूल मंत्र के अठ मनके है, अठवें मनके तो पहले जो सतवां मनका है उसको कट के इस माला तो अलग करो। ये वड्याई है इस बाणी की, उसने कोई क्रम रखिया ही नहीं। पर सानू एक ताकत ऐसी चाहिए, एक आत्मा ऐसी चाहिए जो इस बाणी के बीच छुपे हुए हीरे लाल मोती जड़े ने कट के तुहाडे सामने रख अपने आप कोई अंधी आत्मा बेरी आत्मा कभी इसकी तलाश नहीं कर सकती। इस बाणी के छुपे भावों में कभी समझ नहीं सकते, बेशक विद्वानी अर्थ तुम्हें मिल जाएंगे वो भी आत्मा के कल्याण के सक्षम ने कोई शक नहीं है। जिस तरीके ना सोने की खाक जड़ी है वह भी सोना ही होती है, उस तरह इस बाणी के कैसे भी तुम अर्थ कड लो वह भी कल्याणकारी ने। पर अगर तुम सचमुच ऐसे भाव को प्राप्त करना चाहते हो जिद आत्मा का तुरंत कल्याण हो जाए तो वे वास्ते तो एक आत्मा ऐसी अवश्य चाहिए जड़ी नामी है शब्द मार्गी अपने घर पहुंच चुकी। तो विचार करके देख लेना सतवां मन का है वो है अजोनी सैगा। एक लफज के वास्ते तो ग्रंथ रच दिते जाएंगे अगर इस बाणी को व्यक्त किया बहुत ही संक्षिप्त रूप के केवल आत्मा के कल्याण वास्ते, क्योंकि मनुख जन्म बहुत छोटा है ना किसी को समा है उस समय की कदर कर दिया हो अपनी जिंदगी के भुगतान के लिए इस बाणी के विचार करके अपना कल्याण कर लेना। यह मनुखे जन्म का सब तो कीमती काम है जोड़ा अज तक अभी करी अवर काज तेरे किते नकाम मिल साध संगत भज केवल नाम। एक नाम के सिवा होर तेरा कल्याणकारी कुछ भी नहीं। और जोड़े काम तू करता पाया जोड़ा तू कह रहा बहुत जरूरी ने, इना के बिना मेरे बच्चे भुखे मर जाएंगे काम नहीं हो सकता सारे तेरे किते काम आ। कोई आत्मा का पतन करने वास्ते नाश करने वास्ते शैतान का जिसकी रचिया हुआ जाल है जिसके बीच तू अपनी अस्थि पल पल खत्म करता जा रहा। तो हम विचार करके देख लो अजोनी साहबान पहले अजोनी का विचार करिए जो जोनिया तो रहता है परमात्मा की डेफिनेशन है। एक कसौटी गुरु नानक साहब दे रहे हैं परमात्मा तक पहुंचने वास्ते तैन कोई प्रमाण ना दे क्योंकि शैतान तेरे नाल लग्या है। आत्मा और मन की गल है गुरपक्ष तो पहले कभी नहीं करोड़ यतन कर उस तो बचिए किस तरीके के नाल सारे परमात्मा अपने सामने रख लो अजोनी लफज में सामने रखो कसौटी के नाल इसको रख लो। कसौटी की होंगी है सुनारा रगड़ता उसके नाल तुम भी सुनार बन जाओ रगड़ो अपने बनाए हो इस जगत के भी सारे परमात्मा इस कसौटी के उत्ते क्या अजोनी ने या अजोनी ने सारे बनाए हुए परमात्मा शर्मिंदे हो जाएंगे जिन्होंने आज तुम पूजा करके फिर चाहे वो नानक चाहे गोविंद चाहे ब्रह्मा ने चाहे विष्णु चाहे राम चाहे जितने ही वे वे राजे महाराजे हजूर साहब जी दाता शर्मिंदे हो जाएंगे इस कसौटी के अगे। अजोनी जून तो रह जरा नौ महीने मां के पेट के बीच आ गया जून एक मनुख की जून है उत्तम जून है श्रेष्ठ जून है वैज्ञानिक हो सकता है अकाल पुरख परमात्मा कभी नहीं हो सकता। उस श्रेणी के उस तखत से केवल एक अकाल पुरख परमात्मा ने बिठाओ बाकी सारे आपसे चाहू सब नो अलग कर दो चाहू नाम का चाहू पकड़ो और सब जो चाहिए जितने परमात्मा ने सारे शर्मिंदे हो गए। अजोनी सैभंग सैभंग का भाव है अपने आप किसी तो नहीं हूं फिर सामने लियाओ अपने ओ मां परमात्मा ने जिन्होंने पूज के फिर इतने आए सारा जड़ लोग इस जगत के जिन्हों को परमात्मा बना के चाहे मूर्तियां ने चाहे ग्रंथ ने चाहे होर किसी भी तरीके क्रिया इस जगत के चल रही है सब क्रिया जी आत्मा के कल्याण वास्ते तो हो सकती है पर अकाल पुरख परमात्मा के उस गुण में उस नाम में प्रत्यक्ष नहीं कर सकते क्योंकि वह अपनी मौजदा मान इस कसौटी से रगड़ साहबान थोड़े सारे बनाए हुए परमात्मा थोड़े नाल रखें। आत्मा पहले बनाई गई है प्रकृति बाद में बनाई गई है और प्रकृति को लै करके शब्द की ताकत के नाल ये सारे रूप रखे गए हैं जिन्हों को तुम बना करके ग्रंथ छोटिया मूर्तियां बना करके उन्होंने पूजा कर तो खास संगत जी इस कसौटी के बीच थोड़े जितने परमात्मा ने इस जगत के चाहे वह दे रूप के बीच ने चाहे इस जगत के जड़ रूप के भी ने जड़ और चेतन लोग सारा शर्मिंदा हो जाएगा इन्होंने कोई भी परमात्मा नहीं है सब उस पर रोशन ने जितने भी हजूर दाता जी महाराज ने जिन्हों तुम पूजा कर रहे हो ये सारे उस नाम को रोशन ने उस नाम को प्राप्त करके रोशन अगर उस कारण अलग कर दिता जाए इन्हों की रोशनी कितनी कुछ नहीं होएगा पर ब्रह्म तो अगे आत्मा नहीं जा सकती किसी दाता ने जीवन नहीं सकता। बारह सूरज की समर्था केवल पर ब्रह्म तक है पर ब्रह्म तो अगे नहीं जा सकती तो इस नाम को किसने पहचान लेगी असली रूप से पर ब्रह्म तो अगे शुरू होता उस तो पहले शब्द जितने भी रूप ने सब विकृत रूप परमात्मा की पहचान नहीं हो सकती। इस कसौटी गुरु नानक साहब ने जो मूल मंत्री छुपा के रखा थी अज गुरु साहबान ने आप के सामने रखता तीन साल पहला भी गुरु साहबान ने इस चीज को स्पष्ट किया कि कसौटी दी थी मनुखी जात वास्ते और कल्याण वास्ते बाणी प्रकट की गई है अजोनी साहबान हमेशा अपने नाल रखो और जड़ी भी जगह तुम देखते हो बेशक भीड़ा कट्ठिया आदि ने लाइना लगदिया ने इस कसौटी सामने रख के चुप्पे रगड़ करके दे सब शर्मिंदा भीड़ किस तरह कट्ठी होती है तुम्हारिया गलां किमें पूरिया आदि ने याद रखना विष्णु की ताकत काम कर रही है ये ताकता तुम्हारिया मंगा पूरिया करते हैं तुहाडे वाल पकड़न वास्ते तुहाडी मंग जिहड़ी भी पूरी होएगी तुहाडे वाल पकड़ ले जाणगे क्यों तुहाडा मुल जिहड़ा उस वस्तु का पदार्थ का सीगा वो तुहाडे खाते दे लिख और कीमत चुकाने वास्ते तुहानू फिर सिरे चाहना यही शैतान की मंग है यही उसकी जिद है कि गोद जिहड़ी है इस खेड तो अलग ना की जा सके जो मंग है ठाकुर अपने उत्ते सोई सोई ये पत्थर पोथियां तुहानू नहीं दे रहे इस ताकत छुप करके बैठिया ने दैवी ताकत शैतान की अंश में ला करके वो भी ताकत है नाम विकृत रूप से जितनिया स्थितियां ने यह नाम ही है नाम का विकृत जिस उत्ते तुम कुर्बान हो जितनी चाहे भीड़ कट्ठी कर ली है पर भीड़ कट्ठी करने का लाभ की है सानू तो साफ कहते जी एक भेड़ चाहिए है जड़ी स्वाभाविक रूप रोई सी उस वक्त जो इस खेड में रचण वक्त परमात्मा ने शैतान के हवाले किया उसने कहा कि मैं तुम बुलावगा तुम आ जाना बस वो बुला रहा है तो जड़ी उसकी अपनी आत्मा है साफ संगत जी इस वक्त भी दरबार के मौजूद है जड़ी उस परमात्मा के मुख में देख के खड़ा नहीं सकती शैतान के मुल्क भी सुख नहीं है अगर सुख होता है तो परमात्मा के प्रचार का कोई काम ही नहीं सी नाम का कोई अर्थ ही नहीं यह दुखाले है दुखाले के भी तुम सुख की तलाश कर रहे कभी हो नहीं सकता शर्मिंदा होना तो स्पष्ट हो जाता है सारिया गलों का भाव जो है कि जितना भी तुम इस जगह के परमात्मा प्रत्यक्ष करके उन्होंने पूजा कर रहे हो उन्हें सारे जड़ लोगों के गुरु साहब ने पीछे स्पष्ट किया कि किताब श्रेष्ठ है किताब के अंदर किसी ने बयान किया है उस परमात्मा के बारे में और किताब जो है हर विषय की गुरु है जगह की जितनिया भी पुस्तक ने जिस विषय का संबंध रखदिया ने उस दिया गुरु ने और सब बच्चों विद्यार्थी उसकी कदर करनी सिखाई जाती है मत्था टेकना सिखाया जाता है पर विचार करके देख लो इन किताबों को पढ़ाने वास्ते ट्यूशना भी लगा दी स्कूल भी भेजते हो फिर उसके बाद डंडा भी लैके बैठते हो जो कि बच्चा जब तक सुना करके लिख ना दवे तद तक डंडा थोड़ा चलता रहे केवल किताब में सामने रख के बच्चे कहो भी इन मत्था टेक परिक्रमा कर और मास्टर ने जाकर अगली क्लास चढ़ा दे मास्टर भी मुंह से दो चपेड़ा ला देगा और तुम भी लाओ ये करतूत घोल रही ये दसो ये कि करतूत है किसने सिखाया क्या गुरु ग्रंथ साहब के किसी जगह लफ्ज मौजूद है कि मैं परमात्मा बना करके पालकी भी सजा करके मेरी पूजा शुरू कर दी हो मैं मत्थे टेक के परिक्रमा करो और मेरे अगे खड़े होकर अरदासा करो मेरिया मैं थोड़िया मंगा पूरिया करा है कोई लफ्ज जिन्ह लिखारियों तुम अपने इतिहास का साक्षी कह करके कुर्बान हो रही हो सात संगत जी और लिखारी की कलम उस वक्त प्रत्यक्ष हुई जिस वक्त यह सारी ताकत काम करके जा चुकिया थी यानी 100 साल के बाद गुरु कलगीधर पातशाह जो ये सारा काम करके मुकम्मल इस बाणी गुरु रूप के भेटा करके चले गए उसके 100 साल बाद उन्होंने लिखारिया की कलम ने प्रत्यक्ष होकर के बयान किया कि गुरु साहबान का इतिहास की थी या गुरु ग्रंथ साहब का किया इसके सिवा तुहाडे कोल कोई प्रमाण नहीं उस प्रमाण से विचार करो जिस जगह इस वक्त तुम बैठे तुम्हें पता है जगह कि इस जगह से किसी युग काल के ऋषिया ने कोर तप किया ऐवें नहीं सात संगत जी नाम की ताकत इस वक्त इस जगह से प्रत्यक्ष हुई तुम क्या किसी लिखारी को इस जगह से इतिहास लिखवाओ और 100 साल पहले इस जगह से की सीगा जाओ असी तुहानू दावे नाल कहंदे आ तुसीं इहदा इतिहास ला करके दिखाओ तुहानू शर्मिंदा होना चाहिए तीन पीढ़ियां काल के शैतान के मूंह च चलिया गई अगर कोई घटना घटी भी होएगी तुसीं उहदा ब्यौरा नहीं बयान कर ते लिखारियां की कवियां की जितनी भी कलम चलती है सुनी हुई गल के उत्ते और कल्पना के उत्ते चल इस सिवा होर कुछ भी तुहानू व्यक्त करन की समर्था नहीं जां उहनां कोल दिव्य दृष्टि बहुत सारे ऋषि मुनि हुए जिन्होंने दिव्य दृष्टि को प्राप्त किया और उन्होंने बहुत अच्छिया रचना तुहाडे सामने रखिया, पर उस रचना के विच भी तुहानू शर्मिंदा होना पेगा। इहोजा बयान कभी भी नहीं दिता गया कि मूर्तियां बना करके पत्थरों को काट के ग्रंथों को सिर पर रख के नचना टुपना शुरू कर दो तुहाडा कल्याण हो जाए। ऋषि वाल्मीकि जी ने अंतर के उस परमात्मा की ताकत के नाल इस राम की लीला प्रत्यक्ष किया और जो कुछ अंतर से भी देखा उसनू 20,000 तो वध श्लोकों के 24,000 श्लोकों के उसनू बयान किया। किस वास्ते? आत्मा के कल्याण वास्ते। यानी कि जो चरित्रा के जरिए रूहानियत को व्यक्त किया है उस रूहानियत को तुम अपनी जिंदगी के व्यवहारिक रूप दे करके परमात्मा प्राप्त कर तो तुम कर ही रहे हो। उन्होंने चरित्र की मूर्तियां बना करके उन्होंने पूजा कर रहे हो, तुम्हारा कल्याण किस तरह हो गया? उसी तरीके के नाल वो आत्मा जो परमात्मा की असल की तरफों आई जिन्हों गुरुपत्नी से असी बिठाते हैं उन्होंने उस परमात्मा स्पष्ट रूप के जो योगियों ने बयान किया इस घोर कलयुग के उस योग मत को असं धारण कर ही नहीं। इसका शेष हिस्सा जो है अगले शासन के गुरु साहब भी कुछ स्पष्ट करेंगे कि योगियों का मत किस तरीके कल्याण कर और अज असी किस अवस्था तक उसको धारण कर सकते हैं और शेष किस तरीके के नाल साडे वास्ते कल्याणकारी नहीं होगी। तो विचार करना चाहिए है कि यह सारा जो कुछ भी गुरु साहबा ने बयान किया आत्मा के कल्याण वास्ते बयान किया, परमात्मा की जगह से बिठाण वास्ते या उस तरीके के नाल उसकी पूजा करने वास्ते बयान नहीं किया। तो आत्मा जदों इस किताब में पढ़ती है तो आत्मा श्रेष्ठ है, आत्मा के कल्याण वास्ते किताब में ऋषि मुनिया ने बाणियों को प्रगट किया। तो विचार करके देख लो पढ़ने वाले को पढ़ाने वाला श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उस पुस्तक के भेदा वो जानता है बशर्ते कि वो पूरा हो उस नाम को प्राप्त हो। यानी कि केमिस्ट्री का टीचर है लैबोरेटरी जाके सारे पदार्थों प्रत्यक्ष रूप में देख लेंगे ताही तुम्हारा कल्याण कर सकता है। स्टूडेंट थ्योरी तो कोई भी पढ़ा सकता पर प्रैक्टिकल तो ही कराएगा जो लैबोरेटरी जा करके काम कर सकता उसनों पूरे गुरु की पदवी दी गई है। यानी कि उस आत्मा के गुरु जोड़ा है जोड़ा नाम को प्राप्त है वह सारे को उस तो भी उत्ते श्रेष्ठ है। हाँ बिल्कुल है, उस तो उत्ते वैज्ञानिक है जिसने उस अकाल पुरख परमात्मा की आत्मिक प्रेरणा व्यक्त किया। कोई शक नहीं रह जाता, किसी का कोई निरादर नहीं, किसी का कोई अपमान नहीं, सब दिन श्रेणियां गुरु साहब ने स्पष्ट कर दीं। कोई शोर मचाने की लड़ नहीं है, बड़े ध्यान के नाल विचार करके अपने की जा रहे सारे रोजमर्रा के जिंदगी के कामों सामने रख के विवाही रूप इस बाणी की रखी गई कसोटी के नाल रगड़ करके सारिया गलों चो मुक्त होंगे जाओ जाल तुहाडे सामने अपने आप प्रगट हो। वैज्ञानिक ने उस चीज़ को व्यक्त किया और परमात्मा के सब तो नजदीक है, तो सब तो सरल।